नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रिचर्ड पार्स के उपन्यास बिविल्डमेंट की। ये 2021 में आया था। हिंदी में शायद इसे विस्मय कह सकते हैं।
हाँ, विस्मय। और रिचर्ड पावर्स मतलब वो लेखक हैं जो विज्ञान, तकनीक, कला और इंसानी भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से मिलाते हैं।
बिल्कुल, हमने उनका पुलित्जर वाला उपन्यास दी ओवर स्टोरी देखा था, पेड़ों पर, इंसानी जिंदगियों पर। वो तो जैसे एक महाकाव्य था।
सही कहा। उसकी तुलना में ना बिविल्डमेंट कहीं ज्यादा निजी कहानी है, दिल के करीब। फोकस एक पिता और उसके 9 साल के बेटे पर है।
हाँ, और ये एक बड़ी खती के बाद अपनी जिंदगी को मतलब समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक परिवार के दुख की कहानी नहीं है। पावर्स इसे आज के बड़े मुद्दों से जोड़ते हैं,
जैसे
प्यार, नुकसान और पेरेंटिंग की मुश्किलें।
और वो भी ऐसी दुनिया में जो मतलब पर्यावरण के संकट से जूझ रही है, बटी हुई है।
बिल्कुल। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं थियो बायन्स, वो एक खगोल जीव विज्ञानी है,
एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, जो बाहर जीवन खोजते हैं।
हाँ, और उनका बेटा रॉबिन। थियो की पत्नी एलिसा, जो रॉबिन की माँ थी, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है।
तो थियो अब अकेले ही रॉबिन को पाल रहे हैं। और रॉबिन वो कोई आम बच्चा नहीं है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। मतलब चीजों को बहुत गहराई से महसूस करता है।
भावनाएं बहुत तेज हैं उसकी। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा दर्द उसी को महसूस होता है, खासकर पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, जानवर विलुप्त हो रहे हैं।
हाँ, वो सब उसके लिए सिर्फ जानकारी नहीं है, वो उसे पर्सनली महसूस करता है, जैसे उसे चोट लग रही हो।
और यहीं से मुझे लगता है उपन्यास का मेन संघर्ष शुरू होता है। रॉबिन की ये जो इंटेंसिटी है, ये उसे स्कूल वगैरह में अजीब बना देती है। लोग उसे प्रॉब्लम समझते हैं।
बिल्कुल, सिस्टम, यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसे नॉर्मल बनाने पर तुल जाते हैं, कहते हैं दवा दो, कोई लेबल लगा उस पर।
लेकिन थियो इसके खिलाफ है। वो सोचता है, क्या रॉबिन सच में बीमार है, या ये दुनिया ही इतनी कठोर हो गई है कि ऐसी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती।
सही सवाल है। मतलब क्या रॉबिन को बदलना चाहिए या दुनिया को थोड़ी जरगा बनानी चाहिए ऐसी संवेदनशीलता के लिए?
थियो को यही लगता है कि रॉबिन की इस खासियत को दबाना गलत होगा, उसकी आत्मा को कुचलने जैसा।
हाँ, उपन्यास में एक जगह वो सोचता भी है, शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि रॉबिन बहुत ज्यादा महसूस करता है, शायद प्रॉब्लम यह है कि बाकी लोग बहुत कम महसूस करते हैं।
क्या लाइन है। तो इसी कश्मकश में थियो अपने बेटे के लिए कुछ अलग रास्ते ढूंढता है, पारंपरिक तरीकों से हटकर। और ये खोज उसे एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल और नैतिक रूप से कहें तो मुश्किल इलाज तक ले जाती है। ये कहानी हमें थियो के नजरिए से पता चलती है, तो हम उसके अंदर का जो द्वंद है वो महसूस करते हैं। एक तरफ वो वैज्ञानिक है, तर्क, सबूत, दूर ग्रहों पर जीवन के पैटर्न्स,
और दूसरी तरफ एक लाचार पिता जो अपने बच्चे के इमोशनल उतार चढ़ाव से जूझ रहा है, जहां लॉजिक काम नहीं करता।
हाँ, रॉबिन के लिए प्यार तो बहुत है, पर डर भी है कि शायद वो काफी नहीं है सबके लिए।
और रॉबिन, वो तो जैसे इस उपन्यास का दिल है, एक धड़कता हुआ जख्मी दिल। पावर्स ने उसे सिर्फ एक मुश्किल बच्चा नहीं दिखाया।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसमें गजब की इंटेलिजेंस है, तर्क शक्ति है। हाँ, वो सोशल इशारे समझने में थोड़ा कच्चा है, पर सबसे बड़ी बात है उसकी सहानुभूति, इतनी गहरी कि वो दर्द देने लगती है।
सही, वो दुनिया के दर्द को फिल्टर नहीं कर पाता, सीधा महसूस करता है।
और फिर है एलिसा, थियो की पत्नी, रॉबिन की माँ। कहानी शुरू होने से पहले ही वो नहीं रही, लेकिन पूरे उपन्यास में उनकी मौजूदगी बहुत स्ट्रांग है।
हाँ, थियो की यादों में, रॉबिन के सवालों में, उसके जुनून में, और एक बहुत ही अनोखे तरीके से उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई थी उसके जरिए।
एलिसा एक पर्यावरण वकील थी, पशु अधिकारों के लिए लड़ती थी, दुनिया के अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज।
और यही एलिसा की विरासत कहानी में एक गजब का मोड़ लाती है ना?
बिल्कुल। जब थियो हर तरफ से निराश हो जाता है, तब वो एलिसा के एक पुराने जानकार से मिलता है, डॉक्टर मार्टिन कुरियर, एक न्यूरोसाइंटिस्ट।
और वो एक एक्सपेरिमेंटल तकनीक पर काम कर रहे हैं, डीकोडेड न्यूरोफीडबैक,
DNF।
हाँ,
ये अपने आप में बड़ा आइडिया है। ये सिर्फ भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं सिखाता।
नहीं, ये पहले भावनाओं को पढ़ता है, फिर उन्हें सिखाता है। सोचिए जरा, किसी और के इमोशनल पैटर्न को सीखना।
और मजे की बात ये कि कुरियर के पास एलिसा का भी ब्रेन स्कैन है, वो भी तब का जब वो बहुत शांत खुश थी।
तो ये तकनीक चेतना, व्यक्तित्व, याददाश्त, इन सब पर ही सवाल खड़े कर देती है। क्या हमारी भावनाएं हमारी पहचान डिजिटल रूप में दर्ज हो सकती हैं, दोहराई जा सकती हैं?
थियो के मन में बहुत शंकाएं होती हैं। नैतिक सवाल, क्या ये सही है? कहीं रॉबिन की अपनी पहचान तो नहीं मिट जाएगी?
हाँ, जाहिर है।
पर रॉबिन की हालत बिगड़ती देख थियो इसे आखिरी उम्मीद समझकर हाँ कर देता है। वो रॉबिन को माँ के ब्रेन पैटर्न पर ट्रेन करने की इजाजत दे देता है।
और यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है अविश्वसनीय रूप से। प्रयोग उम्मीद से ज्यादा सफल रहता है।
हाँ, रॉबिन धीरे धीरे अपनी माँ के न्यूरल सिग्नेचर को कॉपी करना सीखता है और असर चमत्कारी।
उसका गुस्सा, बेचैनी सब जैसे धुल जाता है। उसकी जगह एक गहरी शांति आ जाती है, स्थिरता।
बिल्कुल, वो बदल जाता है। उसकी वो सहानुभूति जो पहले उसे तोड़ती थी अब फोकस्ड हो जाती है। वो माँ के अधूरे कामों में, पर्यावरण के मुद्दों में जी जान से लग जाता है।
वो विलुप्त होते जानवरों की तस्वीरें बनाता है, इतनी सुंदर, इतनी दर्द भरी कि दिल भर आता है।
हाँ, और वो पर्यावरण नीतियों पर बड़ों की तरह बात करने लगता है। थियो को लगता है जैसे एलिसा की रूह, उसका जज्बा उसके बेटे में वापस आ गया है।
पिता बेटे के बीच एक नया रिश्ता बनता है। दुख तो है पर अब एक मकसद भी जुड़ गया है।
रॉबिन की बातें मीडिया तक भी पहुंचती हैं। वो एक मासूम लेकिन असरदार आवाज बन जाता है।
लेकिन ये सुकून, ये उम्मीद
टिकती नहीं है। बाहरी दुनिया अपने सियासी खेल और वैज्ञानिक शक के साथ उनकी इस छोटी सी दुनिया में घुस आती है।
देश का माहौल विज्ञान के खिलाफ हो जाता है। डॉक्टर कुरियर के काम को खतरनाक AI माइंड कंट्रोल बता दिया जाता है।
और नतीजा, सरकारी फंडिंग बंद, प्रयोग अचानक रोकना पड़ता है।
और जैसे ही DNF का वो सहारा हटता है,
रॉबिन की हालत तेजी से बिगड़ती है। वो पाई हुई शांति खो देता है। पुराना दर्द, गुस्सा, सब कुछ ज्यादा ताकत से लौटता है।
और शायद इस बार और ज्यादा तकलीफदेह होता होगा क्योंकि उसने वो शांति चख ली थी।
बिल्कुल, उस खोई हुई शांति की कड़वी याद उसके दुख को और गहरा कर देती है। एलिसा का वो डिजिटल भूत गायब हो जाता है। पीछे रह जाता है एक खालीपन, गहरा, अथाह।
ये देखना बहुत दुखद है और ये हमें विज्ञान की सीमाओं का भी एहसास कराता है ना, कि वो बाहरी सिस्टम पर कितना निर्भर है।
हाँ, डेस्मन पे उम्मीद तो दी पर वो बाहरी दबाव नहीं झेल सका। टेक्नोलॉजी अकेले हमारी गहरी मानवीय और पर्यावरण की समस्याओं का हल नहीं है।
जब थियो बिल्कुल हताश हो जाता है तो वो एक आखिरी कोशिश करता है।
हाँ, वो रॉबिन को ग्रेट स्मोकी माउंटेन ले जाता है, एलिसा की पसंदीदा जगह। प्रकृति में शायद कुछ सुकून मिले, कुछ रास्ता दिखे।
कुछ पल के लिए लगता भी है कि शायद उन्हें कोई नया तरीका मिल जाएगा इस दुख से निकलने का।
लेकिन
उपन्यास का अंत दिल तोड़ देता है। पहाड़ों में अचानक बाढ़ आती है और एक पल की चूक में रॉबिन फिसल कर नदी में बह जाता है। उसकी मौत हो जाती है।
कहानी खत्म होती है थियो के गहरे अकेलेपन पर। वो इंसान जो सितारों में जीवन खोज रहा था, धरती पर अपना सबसे कीमती जीवन खो देता है।
उसके पास बचती हैं सिर्फ यादें, बे इंतहा शोक और इस विशाल ब्रह्मांड के सामने इंसान के अकेलेपन का वो विस्मय, बिविल्डरमेंट।
ये कहानी सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, ये हमारे समय के बड़े सवालों से टकराती है, जैसे न्यूरोडाइवर्सिटी।
हाँ, कि जिसे हम अलग या असामान्य कहते हैं, क्या वो सच में कोई कमी है या इंसानी अनुभव का बस एक अलग रंग? समाज अक्सर जो समझ नहीं पाता उसे बीमारी कह देता है।
और इसी से जुड़ा है इकोलॉजिकल ग्रीफ का मुद्दा, पर्यावरण का दुख। रॉबिन का दर्द सिर्फ उसका नहीं है, वो इस बीमार ग्रह के दर्द का आईना है।
पावर्स दिखाते हैं कि ये पर्यावरण का दुख कोई दूर की बात नहीं, ये आज की हकीकत है। रॉबिन जैसी आत्माएं इसे ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं। तो क्या महसूस करना बीमारी है या महसूस ना कर पाना?
और वो डेफिनीफ प्रयोग, वो चेतना, याददाश्त, विरासत, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है। क्या इंसान का सार, उसकी भावनाएं मरने के बाद भी किसी रूप में बच सकती हैं?
एलिसा का ब्रेन पैटर्न रॉबिन के लिए एक तरह की वैज्ञानिक विरासत बन गया था। ये टेक्नोलॉजी की संभावनाओं और उसके खतरों दोनों तरफ इशारा करता है।
और फिर पेरेंटिंग का सवाल, खासकर आज के मुश्किल दौर में, ये एंथ्रोपोसीन युग जहां इंसान पृथ्वी को बदल रहा है।
इस युग में बच्चों को पालना थियो की जो उलझन है, वो हर उस पेरेंट की उलझन है जो बच्चों को दुनिया की सच्चाई से बचाना भी चाहता है और आने वाले कल के लिए तैयार भी करना चाहता है।
बना झूठ बोले उम्मीद कैसे दें, बड़ा सवाल है।
पावर्स का लिखने का अंदाज भी इसमें बहुत मदद करता है। थियो का फर्स्ट पर्सन नरेटिव हमें सीधा उसके मन में ले जाता है। हम दुनिया को उसके दुख, प्यार, तर्क और कन्फ्यूजन से देखते हैं।
और कहानी का स्ट्रक्चर भी बढ़िया है। तीन धागे साथ चलते हैं, आज की कहानी, एलिसा की यादें और थियो की वो काल्पनिक ग्रहों की कहानियां,
एक्सोप्लैनेट की कहानियां। हाँ, वो सिर्फ किस्से नहीं है, वो मेटाफर्स हैं, जीवन जीने के, समाज बनाने के दूसरे तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, वो थियो के कॉस्मिक काम और उसकी जमीनी चुनौतियों के बीच जैसे एक पुल बनाते हैं।
और सिंबल्स का इस्तेमाल भी बहुत है। एक्सोप्लैनेट मतलब संभावना, पलायन। एलिसा का ब्रेन स्कैन मतलब यादें, पहचान, शायद प्यार का भूत।
और रॉबिन के बनाए वो जानवरों के चित्र, वो मासूमियत की गवाही हैं, बचाने की कोशिश है और एक खामोश विरोध भी।
प्रकृति के चित्र, खासकर स्मूकी माउंटेन के, वो लैब के माहौल और बाहर की दुनिया की कड़वाहट से बिल्कुल अलग दिखते हैं।
शायद ये प्रकृति से हमारे टूटते रिश्ते की तरफ भी इशारा है।
तो कुल मिलाकर बिविल्डमेंट एक ऐसा उपन्यास है जो हमें गहरी सहानुभूति महसूस करने को कहता है, अपने समय के सवालों से जूझने को कहता है और इस उलझी हुई दुनिया में कोई अर्थ, कोई जुड़ाव खोजने के लिए प्रेरित करता है।
हाँ, और ये हमें चुनौती भी देता है कि हम नॉर्मल किसे कहते हैं, इस पर दोबारा सोचें। और जो लोग दुनिया को अलग तरह से महसूस करते हैं, उनके लिए दिल में ज्यादा करुणा और समझ रखें।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।